स्नेहल स्वरूप शक्ति स्वरूपा निर्मल मन निश्चल वाणी ऐसे है हमारे मंगला दीदी जी। हम उनका जोरदार करताल ध्वनि से इस मंच पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी बाबा की मुरली से लाभान्वित तो हो ही गए सवेरे। अभी साकार बाबा की मुरली और उस पर हमारी धारणाएं, वो धारणाएं कैसे स्वरूप में लाए जो सुना है, तो उसके ऊपर हमें दीदी जी लाभान्वित करेंगे। आदरणीय मंगला दीदी जी बरहानपुर सब जोन से।
ओम शांति। हम सभी संगम युगवासी बहुत बहुत भाग्यशाली है क्योंकि इसी संगम युग पर प्यारे बाबा ने हम सभी को अपना बच्चा बनाया। और केवल अपना बच्चा ही नहीं बनाया लेकिन सच्चा सच्चा ब्राह्मण भी बनाया। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण दुनिया में भी बहुत है लेकिन बाबा ने हमें सच्चा ब्राह्मण बनाया। वो ब्राह्मण नामधारी है और हमें बाबा ने कर्मधारी धारणाधारी ब्राह्मण बनाया है। जो हम कहते हैं उसको बाबा ने करना सिखाया है अर्थात ब्राह्मण माना ही सबसे ऊंच सबसे महान और सबसे पवित्र। हमारे जैसा ऊंचा सारी दुनिया में तो क्या सारे कल्प में भी कोई नहीं होगा जितना संगम युग पर हमारा पार्ट है। जितने महान हम अभी हैं उतना सारे कल्प में महान भी नहीं कोई होगा। बाबा भी मुरलियों में कहता है कि तुम्हारा ये संगम युगी जीवन ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंचा है पवित्र है श्रेष्ठ है क्योंकि हम ब्राह्मण पुरुषार्थी तो है ही परंतु साथ में हम विश्व की सेवा के लिए भी निमित्त बने हुए हैं। जो सेवा देवताएं भी नहीं कर सकते वो कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है। इसीलिए बाबा कहता है तुम बहुत बहुत महान हो। और तीसरा ब्राह्मण अर्थात पवित्र। दुनिया में साधु संत महात्मा भले अपने आप को पवित्र समझते या वो पवित्र है लेकिन उनके शिष्य वो कैसे होते वो होते उनके जैसे पवित्र नहीं। पर बाबा ने हम सबको बाबा पवित्रता का सागर है और हमें भी पवित्र बनाया और पवित्र दुनिया स्थापना के लिए निमित्त बताया। तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन ही बाबा ने पवित्रता को बताया कि पवित्रता ही इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन की हमारी सच्ची पूंजी है। ये इस जीवन का आधार भी है, तो साथ में हमारी सच्ची पूंजी भी है। और अपने पूंजी कोई गवाना नहीं चाहता है, वो स्थूल पूंजी, स्थूल धन संपत्ति मनुष्य के वहां के वहां रह जाती। लेकिन हमारी ये पूंजी हम अपने साथ लेकर जाते हैं। पवित्रता ही सर्व गुणों की खान भी बाबा ने बताई है कि जहां पवित्रता है वहां सारे दैवीय गुण भी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार भी बाबा ने बताया है। बाबा ने हम सब पवित्र ब्राह्मण बच्चों को ये भी प्रतिज्ञा दी है कि जब तक जिएंगे तब तक इस पवित्रता की रक्षा करेंगे। तो ये पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन की रक्षा करेगी। हमारा काम है केवल इस पवित्रता की रक्षा करना। या यूं कहे कि बाबा ने जो संगम युगी ब्राह्मणों को ईश्वरीय मर्यादाएं, दैवी धारणाएं दी है, नियम सिखाए हैं, ये सब हमारे रक्षा के साधन है। जितना हम इन मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, इनका पालन करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, तो यही नियम मर्यादाएं धारणाएं हमारे जीवन की रक्षा करेगी। अंत में हमें कुछ भी काम नहीं आने वाला है, केवल और केवल संगम युग की हमारी जो पूंजी हमने जमा की है वही हमें अंत में काम आएगी। तो बाबा ने हमें ये वर्षे के रूप में पवित्रता दी है, साथ ही साथ उसके भी पहले बाबा ने हमें ज्ञानवान बनाया है। पवित्रता का भी तो सच्चा ज्ञान बाबा ने दिया है। और बाबा ने जो ज्ञान दिया है, आप देखिए सारे संसार में इतना ऊंचा और इतना श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान आज दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। बल दुनिया में कितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, कितने भी ज्ञानवान हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के आगे कहो या बाबा के ज्ञान के आगे, बाबा कहते उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं। और वो ज्ञान क्या दिया है बाबा ने, हमें अपने सत्य स्वरूप की पहचान दी है। बाबा ने अपना सत्य परिचय हमें दिया है, वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, अगर है भी तो अयथार्थ। और यथार्थ परिचय केवल और केवल हमारे पास, हम बच्चों को बाबा ने दिया है। तो सच्चा ज्ञानवान भी बाबा इस समय हम बच्चों को बनाता है, गुणवान, धनवान, बलवान। आप देखो सारे कल्प में और कोई नहीं जो हम बच्चे हैं। सच्चा अविनाशी धन भी हमारे पास है, जो हम आत्मा अपने साथ लेकर जाते हैं। ये सारे खजाने संगम पर ही हम बच्चों को बाबा से प्राप्त होते हैं। अब इन खजानों को बाबा ने तो हम सबको दिया, अब इन खजानों को बढ़ाने की विधि भी बाबा ने सिखाई है। केवल संभालना नहीं है, परंतु उन खजानों को बढ़ाना भी है। सच्चा ज्ञानी या सच्चा समझदार वही है जो मिले हुए खजाने को, मिले हुए वर्षे को, मिली हुई प्रॉपर्टी को बढ़ाए। और बढ़ाने का साधन है जितना हम उनको कार्य में लगाते हैं, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे अन्य के प्रति, विश्व की सेवा के प्रति। हम जितना उसको कार्य में लगाते जाते हैं, उतना ये खजाने हमारे बढ़ते जाते हैं। बाबा कहता है, बच्चे तुम देते जाओ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसको औरों को देते जाओ। देना ही लेना है, देना ही बढ़ाना है। तो बाबा का संगम पर हम बच्चों के ऊपर कितना प्यार है, कितना आशीर्वाद है, जो ये सारे खजाने बाबा ने हमें दिए हैं। और उसमें भी बाबा कहता है, बच्चे तुम्हें सदा ये नशा रखना है कि हम किसके बच्चे हैं। हाँ बोलो, किसके बच्चे हैं हम सब? हाँ, भगवान के बच्चे हैं, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, पाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। वो बाबा हमें मिला और उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया, तो कितना नशा होना चाहिए। नशा माना खुशी, नशा माना वो दिखाई दे हमारे द्वारा, है ना। दुनिया में भी देखो नशा करते हैं ना लोग, लेकिन वो नशा करने वाला कभी बोलता नहीं है कि मैंने नशा किया है या मैंने पिया है, बोलता है क्या वो? लेकिन कैसे पता चलता है? उससे पूछो भी ना कि आपने नशा किया है ना, तो क्या कहता है वो? कभी नहीं मानता है कि हाँ मैंने किया है। हाँ, वो ना ही करता है, लेकिन उसके चेहरे से, उसके बोलने से, है ना, उसके चलने से, उसके कर्म से, व्यवहार से हमें पता चलता है कि इसने नशा किया हुआ है, पिया है। ऐसे ही हमारा भी नशा बल गुप्त है, लेकिन वो दिखाई भी तो देना चाहिए ना। वैसे नशे के हमारे संकल्प हो, वैसे नशे के हमारे बोल हो, नशे के बोल माना अभिमान वाले नहीं, लेकिन उमंग उत्साह वाले, औरों को हिम्मत दिलाने वाले, ऐसे नशे के हमारे बोल हो, कर्म भी हमारे इतने श्रेष्ठ हो, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान मेरा साथी है, तो वो हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में, प्रैक्टिकल में दिखाई दे। फिर हमें ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली सामने वाला पूछेगा, क्या बात है, आज आपको क्या मिला? तो हम उनको बड़े नशे से, फखुर से कह सकेंगे ना कि जो हमें मिला वो किसी को नहीं मिला। इतना नशा और इतनी खुशी सदैव बाबा कहते तुम्हें चढ़ी होनी चाहिए। जिसको बाबा मुरली भी देखो, मुरली में भी बाबा क्या करता है, यही तो खुशी की बातें हम बच्चों को सुनाता है, नशा चढ़ाता है। और सदैव बच्चों को खुश देखना चाहता है। बाबा रिजल्ट भी कह देता है, सुना देता है कई बार कि अभी बच्चों को इतनी खुशी नहीं है जितनी बाबा चाहता है, जितनी बाबा हमारे द्वारा देखना चाहता है, उतना नशा व खुशी दिखाई नहीं देती है। इसीलिए बाबा को बार बार क्या करना पड़ता है, नशा दिलाना पड़ता है। वैसे भी अगर किसी मनुष्य का कोई साथी नामी ग्रामी हो या किसी बड़े व्यक्ति के साथ उसका संबंध अच्छा होता है तो उस व्यक्ति को भी कितना नशा रहता है, हा? रहता है कि नहीं? और जिसको कोई साथ नहीं देता है, देखो उस व्यक्ति का मनोबल गिर जाता है, मेरा कोई साथी नहीं है। पर हमारा साथी है, कौन है साथी? सर्वशक्तिवान भगवान, वो मेरा पिता है और वो सदा मेरे साथ है, उसने वायदा किया है। बस गलती हम क्या कर देते, हम भूल जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, वहां पर फिर हमारी हिम्मत उमंग उत्साह हमारा कम हो जाता है या रुकावट आ जाती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम अपने को अकेला नहीं समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा साथ हूँ। साथ भी नहीं, साथ वाले को तो फिर भी भूल जाएंगे। बाबा ने तो ये भी कहा है कि अपने को सदा कंबाइंड समझो, कि मैं अकेला भी नहीं, अकेली नहीं हूँ, लेकिन मेरा साथी, मेरा, मैं और बाबा दोनों भी हम कंबाइंड है। तो दोनों की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। हमारे पास बल शक्ति ना भी हो लेकिन यदि बाबा साथ है, याद है, तो बाबा तो है ही हजार भुजाओं से भी अधिक शक्तिशाली। तो उनकी भुजाएं, उनकी शक्ति हमारे कार्य को सफलता दिलाती है। इसलिए बाबा को सदा साथ रख कर, याद करके बाबा कहते आप हर कार्य करो। तो हर कार्य में हमें सफलता मिलेगी और साथ साथ बाबा की मदद मिलेगी। तो बाबा को याद रखने के लिए, साथ रखने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। और जहां हमारा मन एकाग्र रहता है वहां पर हमें शक्ति का अनुभव होता है। बाबा ने कितनी बड़ी शक्ति हम सबको दी है, मन। मन बहुत बड़ी शक्ति है जो हम सब के पास है। उस मन को ही हमें शुद्ध रखना है, ज्ञान के मनन चिंतन में रखना है। तो हमारा मन एकाग्र रहेगा और शक्ति की अनुभूति होगी। बाबा ने सबसे पहले ज्ञान के भी पहले हमें अपने संकल्प जो बीज है, कर्म का आधार, संस्कार का आधार, उस बीज को परिवर्तन कराया है। मुरली क्या है? एक एक संकल्प बाबा दे रहा है ना। तो संकल्प यदि हमारे श्रेष्ठ है, संकल्प परिवर्तन हो गए, श्रेष्ठ बन गए, तो जैसा संकल्प वैसे हमारे बोल, और वैसे ही हमारे कर्म भी दिखाई देंगे, और जैसा कर्म वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। ये बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि संस्कार माना संकल्प के आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं। तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा पहले अपने संकल्प को परिवर्तन करो, संकल्प को चेक करो। जो भी मन में संकल्प चलता है, क्या वो संकल्प ज्ञान युक्त है? बाबा जैसा चाहता है ऐसे हमारे वो संकल्प चलते हैं? अगर नहीं तो हमें भी बाबा ने छुट्टी नहीं दी है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत के हमारे संकल्प भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा मन में जो संकल्प होगा, हमारी दृष्टि भी वैसे ही रहेगी, हमारे बोल भी वैसे ही रहेंगे, और हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। इसलिए संकल्प भी ज्ञान युक्त संकल्प, संकल्प से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। अगर संकल्प हमारे कमजोर है तो हमारी स्थिति भी कमजोर ही रहेगी। सबका आधार क्या है? संकल्प है ना, जिसको बाबा बार बार कहता है कि इन विकारों के ऊपर विजय पाने के साथ साथ, संस्कारों के ऊपर विजय पाने के साथ साथ, पहले व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और कमजोर मन वाला, कमजोर संकल्प वाला कभी शक्तिशाली बन नहीं सकता है। जितने संकल्प श्रेष्ठ होंगे, पावरफुल होंगे, उतनी हमारी स्थिति भी कैसी रहेगी? स्थिति भी हमारी पावरफुल रहेगी। और पावरफुल स्थिति के लिए हमें अपने मन की संभाल रखना भी बहुत जरूरी है। मन ही हमारा क्या होता है? डगमग हो जाता है ना, स्थिति बाद में डगमग होती है, उसके पहले मन डगमग होता है। देखो, अगर कोई बात की खुशी होती है ना, तो खुशी भी पहले मन में आती है, और यदि दुख होता है तो भी पहले मन ही दुखी होता है। खुशी भी मन में आती है पहले, और दुख भी मन में आता है, फिर बाद में वो हमारे चेहरे से कहो या हमारे व्यवहार से दिखाई देती है। इसलिए पावरफुल मन, पावरफुल स्थिति, अर्थात चाहे कैसा भी विघ्न आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी स्वभाव संस्कार वाला व्यक्ति सामने आ जाए, या कितनी भी विपरीत परिस्थिति भी होगी तो भी हमारी अवस्था एक रस, और एक रस स्थिति माना मन शांत, यानी बाहर की शांति खाली, कि मुख से कुछ ना बोले और मन में तूफान चलता रहे, उसको भी एक रस अवस्था नहीं कहेंगे। बाहर की शांति के भी पहले हमारे मन में शांति होगी। मन शांत अर्थात संकल्प विकल्प से मुक्त। अगर मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं और हम कहते नहीं हम तो बहुत अच्छे, हमारी स्थिति कोई खराब नहीं है, तो उसको कहेंगे एक रस अवस्था, नहीं कहेंगे ना। और उसके लिए चाहिए अंतर्मुक्ता की आवश्यकता। मन को शक्तिशाली बनाना है तो हमें बस बाबा को देखना है, बड़ों को देखना है और अपने आप को देखना है। और मन के जो संकल्प, बाबा ने कहा है कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा कीमती खजाना है। देखो लौकिक दुनिया में भी जो समझदार व्यक्ति होता है वो धन को भी व्यर्थ नहीं गवाता है, उसमें भी बचत की सोचता है। तो हमारे पास ये संकल्प रूपी धन बहुत कीमती है, एक एक संकल्प हमारा बहुत कीमती है, नई दुनिया की स्थापना के लिए मददगार है हमारा एक एक संकल्प। बाबा ने भी संकल्प से ही दुनिया रची, हमको भी अपना भविष्य संकल्प के द्वारा श्रेष्ठ बनाना है, तो बाबा के कार्य में भी हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की सहयोग की आवश्यकता है। जितने हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे हम वातावरण को शुद्ध पावरफुल बना सकते हैं। तो ये संकल्प भी हमारा एक भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसकी भी जितनी हम मदद बचत कर सकते हैं उतनी हमें बचत करनी है। जहां जितनी आवश्यकता है उतने संकल्प किए, और जहां आवश्यकता नहीं वहां पर एकाग्र होकर बाबा को याद करो। संकल्प हमारे कहां ज्यादा वेस्ट होते हैं, जहां हम दूसरों को देखने लगते हैं, जहां हम क्यों क्या कैसे में चले जाते हैं, वहां हमारे संकल्प क्या होते वेस्ट जाने लगते हैं। इसलिए हमें किसी को नहीं देखना है, बस बाबा की मुरली सामने रखना है और ये याद रखना है कि बाबा के मुरली का एक एक महावाक्य, एक एक श्रीमद, एक एक धारणाएं ये बाबा ने मुझे कही है, मेरे प्रति है ये, और ये मुझे करना है। बाबा ने मेरे में ये उम्मीद रखी है जिसको मुझे पूरा करना है। मैं वो अर्जुन हूं जिसको स्वयं भगवान अभी गीता का ज्ञान दे रहा है, तो उसको मुझे प्रैक्टिकल में करना है। इससे ये भी फायदा होगा कि एक तो हमारा मुरली पर अटेंशन रहेगा, होता है ना, कोई अगर हमारे से बात कर रहा हो पर्सनल तो हमें कभी नींद आती है, कभी हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, कभी झुटका आएगा, नहीं आएगा ना। कितना अटेंशन से हम सुनते हैं, कोई बात अगर सुना रहा होता है तो। वैसे बाबा की मुरली सुनते समय भी यदि हमारे बुद्धि में ये रहे कि बाबा केवल और केवल मेरे लिए आया है, मुझे सुना रहा है, तो कितना नशा रहेगा, कितनी खुशी रहेगी और कितना अटेंशन रहेगा। बाबा का एक एक महावाक्य हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्व का है। कोई एक भी बाबा का ऐसा महावाक्य है जो हम सोचे कि ये मेरे लिए नहीं है? कई बार अगर हमारी अवगुण की दृष्टि होती है और बाबा कोई बात मुरली में सुनाता है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जिसके अंदर की कोई कमी हमने देखी है तो हमारे में भी, पर अपनी कमी नहीं दिखाई देती है, दूसरे की दिखाई देती है और उस घड़ी हमारे सामने वो आ जाता है व्यक्ति। अच्छा हुआ बाबा ने आज इसको सुनाया, इसके लिए ये मुरली है आज की, है ना? पर क्या उसमें अवगुण है और मेरे में नहीं है? उसके अवगुण को देखने का अवगुण भी तो मेरे अंदर है। जो भगवान की मुरली सुनते समय भी मेरी बुद्धि उस व्यक्ति की तरफ गई, उस आत्मा की तरफ गई। हमारे में कितने अवगुण थे, कितने बुराइयां थी, बाबा ने देखी क्या हमारी? अगर बाबा देखता तो हमको अपना बनाता भी नहीं था। लेकिन उसने कितना रहम करके एक गुण को देखकर हमें अपना बनाया और उस एक गुण के आधार पर बाबा हमको कितना गुणवान बना देता है। तो बाबा भी कहता है बच्चे, अगर उस आत्मा के अंदर अवगुण आप देख भी रहे हो तो आप उसके प्रति शुभ भावना रखो ना, उसको सहयोग दो, उसको मदद दो, हिम्मत दो, उसका अवगुण मिटाने में आप उसका साथ दो, सहयोग दो, ना कि अवगुण देखकर उस व्यक्ति के प्रति मन में और घृणा भाव लाओ और ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करो। ये ज्ञानी का काम नहीं है, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। हम सभी बाबा के जो भी बच्चे हैं, जो इस शरीर में है, हम सभी पुरुषार्थी हैं। हमारे में कोई ना कोई कमी है और उस कमी को मिटाने के लिए ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें तो अपने भी कमी कमजोरियों को मिटाना है और दूसरे को भी सहयोग देना है, मदद करना है, उनके प्रति भी शुभ भावना रखनी है। विशेष बाबा को याद करके उनको योग का बल दे ताकि वो आत्मा भी इस अवगुण से छूट जाए। अगर हम उसके अवगुणों का चिंतन करते हैं तो हमारा अपना ही योग टूट जाता है, हमारी अपनी खुशी कम हो जाती है। और बाबा ने तो काम दिया ही नहीं है, बाबा कहते हो काम मेरा है। बाबा का काम है ना, जबकि बाबा भी देखता नहीं है और हमें तो और ही छुट्टी नहीं दी है किसी के अवगुणों को देखना। बाबा कहता अवगुण देखना माना साफ कपड़े पर लगे हुए दाग को देखना। अवगुण माना गंदगी, और गंदगी कौन देखता है? गंदगी के ऊपर कौन बैठती है? बोलो कौन बैठता है गंदगी पर? देखो मक्खी होती है ना, मधुमक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठेगी, वो फूलों पर बैठेगी, खुशबू लेगी। और गंदी मक्खी क्या कहाँ बैठती है? वो साफ जगह नहीं दिखाई देगी, लेकिन जहां गंदी जगह होगी, गंदगी होगी, बदबू होगी, उसी स्थान पर बैठेगी। सोचो यदि हम भी किसी के प्रति हमारी ऐसी दृष्टि जाती है, माना उस घड़ी में कौन बन गई? हमें बनना है मधुमक्खी, जो सबसे गुण लेकर मधु अर्थात शहद जैसा अपने जीवन को बनाना है। अवगुण की दृष्टि समाप्त, और गुण देखना है, गुण चोर बनना है, गुणदान करना है। अवगुण देखना भी नहीं, वर्णन करना भी नहीं, क्योंकि खाली हम देखते नहीं है, देखने के बाद क्या होता है? वर्णन भी करते हैं ना हम। और वर्णन करने से बाबा की एक अव्यक्त वाणी चली थी कि जब आप वर्णन करते हैं तो आप वातावरण को कमजोर करते हो। जो वातावरण कमजोर होने से वो आत्मा भी कमजोर बनती है। और यदि आप शुभ भावना रखते हैं उस आत्मा के प्रति, तो उस आत्मा को भी परिवर्तन होने में मदद मिलती है। ये सूक्ष्म कनेक्शन है जिसको बाबा योग बल कहता है या सकाश कहता है। तो हम ब्राह्मण एक दूसरे के प्रति ये शुभ भावना रख करके सहयोग तो दे सकते हैं ना, जिसको बाबा गुणदान कहता है, शक्तियों का दान कहता है। ज्ञान तो बाबा दे रहा है, हम ज्ञान दान नहीं दे सकते ब्राह्मणों को, उनके पास भी बहुत है। आप किसी को ब्राह्मण को ज्ञान सुना के देखो क्या कहता है, पता है ना? मेरे को भी मालूम है, मेरे को भी। वो नहीं दे सकते हम, लेकिन जो गुण बाबा ने भरे हैं वो गुणों का हमको दान करना है। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो कमजोरियां है, छोटे छोटे जो हमारे संस्कार है, छोटी छोटी जो गलतियां हमारे से पुरुषार्थी जीवन में हो जाती है, बाबा कहते इसको भी छोटा नहीं समझो। ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा हमारा संस्कार बन जाता है, और उस संस्कार को मिटाने के लिए फिर हमको ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए संगम पर छोटी भूल भी छोटी नहीं है। ये छोटी सी भूल या छोटी सी आदत हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए जहां छोटी भूल दिखाई दी उसको वहां ही परिवर्तन कर देना है। जो हम सब ने सुना है ना, हमारी मम्मा क्या कहती थी, जो एक बार भूल हो गई उसको दोबारा नहीं करना है। और हम क्या क्या भूले करते रहते दिन भर में, जो हमें भी पता नहीं चलती, और बाबा मुरलियों में हमको सुनाता है ना। फिर देखो जब बाबा सुनाता है तो हमको ही हंसी आने लगती है, आती है कि नहीं? करते तो हम ही हैं, वो भूले, और वो भूले करते करते भी आत्मा कमजोर हो जाती है, शक्ति नहीं आती है, भूल करना भी आत्मा पर बोझ हो जाता है, और ये बोझ आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता है, शक्तिशाली बनने नहीं देता है। तभी बाबा सारी मुरली सुनाने के बाद क्या कहता है, अच्छा बच्चे समझा, सुनाने के बाद पूछता है ना, समझा, समझा माना मुरली तो समझ में आई, ज्ञान समझ में आ गया, पर उसमें मेरे लिए बाबा ने क्या कहा वो मेरे समझ में आया, और समझ में आना माना उसको चेक करो, चेक करके उसको परिवर्तन करो। सिर्फ चेक करने तक भी बाबा छुट्टी नहीं देता है, क्या कहता है, जो भी आपके पुराने आदतें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव है, उसको बाबा ने क्या कहा है, योग के अग्नि में उसको भस्म कर दो, उस संस्कारों का अग्नि संस्कार कर दो। अग्नि संस्कार करना माना अग्नि में समर्पित कर देना चीज, माना उसका परिवर्तन हो जाना, नाम निशान मिट जाना, राख हो जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में हम संस्कार है, आदत है, ऐसा कह कह करके उसको और बढ़ाते जाते हैं। कहते हैं क्या करिए, तो मेरी आदत है ना, मेरा संस्कार है, पर हम ये संस्कार और ये कहते कहते कब तक चलाएंगे। बाबा कहता है बच्चे अभी तो समय कितना नाजुक चल रहा है, और समय की समीपता को देखते हुए बाबा अब यही इशारा देता है कि अब जो भी कमी कमजोरी है उसको खत्म करना है। हम बाबा के बने हैं बाबा समान अपनी स्थिति बनाने के लिए, संपन्न संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए हम बाबा के बने हैं ना। तो जो हमारे स्थिति में अपूर्णता दिखाई दे रही है, जो बाबा आईना दे देता है मुरली के द्वारा, तो उस संस्कारों को, उस कमियों को, उस आदतों को, गलतियों को मिटा देना है, और अभी मिटाएंगे तो आधा कल्प के लिए वह हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे अपने संस्कार को मिटाने के लिए सहज भी नहीं है, उसके लिए भी क्या चाहिए, योग, बाबा की याद, और याद भी पावरफुल याद चाहिए, शक्तिशाली याद चाहिए, जैसे लोहे को गलाने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है ना, सोने को गलाने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है, और वो अग्नि भी कैसे, ऐसे धीमी धीमी आग पर गलेगा लोहा या सोना गलता है, उसके लिए भी पावरफुल आग लगती है, तब वो सोना भी शुद्ध होता है, उसमें से अलाई निकलती है। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी अब विशेष समय अनुसार अपने योग की अवस्था को पावरफुल बनाने के लिए स्वयं पर अटेंशन देना जरूरी है। फ्री है, ज्ञान का मनन चिंतन करो, चलो वो भी हो गया, फिर बैठ जाओ और बाबा को याद करो। और यहाँ मधुबन में तो हम और ही सब बातों से फ्री होकर आते हैं, या तो किसी बात का कोई टेंशन नहीं होता है ना, कोई फिक्र नहीं होती है, कोई काम काज नहीं होता है, सब कुछ बाबा के घर में तैयार मिलता है। बस केवल कम से कम हम यहाँ आते हैं तो हम अपने ऐसे कमियों को यहाँ ही समाप्त करके जाए। वैसे भी दुनिया में भी लोग देखो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो क्या करते, दान करके आते हैं ना, वो तो धन दान करेंगे या कोई खाने की चीज का दान करके आते कि हम यहाँ जाएंगे हम ये छोड़ के आए, हमको क्या दान करना है। बाबा के घर जैसा ये पवित्र भूमि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, स्वयं भगवान हमारे सामने है, तो हम अपने कमियों को यहाँ समाप्त करके जाए। उसके लिए विशेष हम अपने लिए समय निकाल कर योग तपस्या करें और उस योग तपस्या में अपने रहे हुए संस्कारों का क्या करेंगे, अंतिम संस्कार करना है। बाबा तो कहता संस्कार क्या, उसके बाद तो राख भी बहा देते हैं। तब यहाँ से जाने के बाद हमारे घर वाले संबंधी हाँ सबको ये लगे कि ये तो पूरे परिवर्तन होकर आए, बदल कर आए, को दिखाई ना दे हमारा भी कोई संस्कार था। आज अपनी दादियां अपने बड़े इतने पावरफुल इतने शक्तिशाली क्यों है, वो भी तो पुरुषार्थी जीवन में ही थे, संगठन में थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा, अपने समय संकल्प शक्ति को व्यर्थ नहीं गवाया। उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाने की मेहनत की, पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ से उन्होंने अपनी वो अवस्था बनाई जो आज वो हमारी अवस्था बनाने के लिए निमित्त बन के बैठे हैं। जहां जितनी उम्र होते हुए भी आप देखिए अपने हमारी दादियों की ना कभी उमंग उत्साह कम होता ना कभी हिम्मत कम हुई, और हम थोड़े से में क्या हो जाते, हिम्मत को हार देते, खुशी हमारी गुम हो जाती, कारण कि हम दूसरे को देखने लगते हैं और दूसरे को देखने से हम कभी अपना भला नहीं कर सकते, अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखना है तो मुझे अपने आप को देखना है, बाबा को देखना है। इसलिए सामने किसका चित्र है, हर सेंटर पे भी घरों में भी बाबा कहता ना बाबा को सामने रखो, बाबा को देखते जाओ। सिर्फ बाबा को देखोगे तो भी बाबा जैसा तो हम बन जाएंगे, पर देखते तो रहे बाबा को, बाबा के सामने बैठकर क्या देखेंगे बाबा को, बाबा के नैनों को देखना है, कितने रूहानी नैन है बाबा के, कितने करुणा भरे नैन है, कितनी शक्ति दे रहा है बाबा सामने बैठ करके। बाबा के मुरली हम सुनते हैं, ये बाबा के संकल्प है ना, बाबा के जो संकल्प वो हमको भी तो चलाने हैं, बाबा की जो वाणी है वो हमको बोल बोलने हैं, यही काम दिया है ना बाबा ने, समान माना क्या है, हमको बाप समान बनना है ना, तो बाप समान अर्थात ही जो बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाबा के बोल वो मेरे बोल, चेक करना है, जो बाबा के कर्म वो मेरे कर्म, जो बाबा का हर बच्चे के प्रति व्यवहार था वैसा मुझे करना है। तो दिन भर अपने आप को चेक करते जाना है, और जहां कोई भी बात की कमी गलती दिखाई दे रही है, ये दाग है, अवगुण है, जिसको बाबा कहता तुम्हारा रजिस्टर साफ होना चाहिए, तो जहां ये दाग दिखाई दे, यहाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन हम आए हैं, तो यहाँ अपने उस दाग को साफ करके जाना है। ये दाग नहीं तो साथ जाएगा, और साथ जाने से पहले क्या होगा, बीच में रुकना पड़ेगा, वो दाग को साफ करना पड़ेगा धर्मराजपुरी में। और वो कैसे साफ होगा, यहाँ तो बैठे बैठे योग करके ही उस दाग को मिटाना है, अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके, दुआ का काम करके उसको खत्म करना है, और या नहीं हुआ तो वहाँ लास्ट क्या रहता है, धर्मराज की सजा, वहाँ तो उस खाते को चुकाना है ना। तो यहाँ ही अपने अकाउंट को साफ क्लियर करके जाना है। 84 जन्मों का हमारा अकाउंट है, और वो केवल अभी संगम पर क्लियर करना है, और उसके लिए बाबा ने हमें कितनी विधियां दी है, उन विधियों को अपनाते हुए, उसको याद रखते हुए हम अपने उस संस्कार को, कमी को मिटाते रहे, तो हम भी बाबा के समान बन जाएंगे। हम ही तो बने थे, और अभी भी बाबा ने हमें ही तो अपना बनाया है, चुना है सारे संसार में, हमारे में ही तो बाबा ने उम्मीद रखी है कि हाँ यही मेरे बच्चे हैं जो देवता बनने वाले हैं। बने भी थे और हम ही बनने वाले भी हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कब तक मुझे भी इंतजार कराओगे, इंतजार कर रहा है ना हमारा बाबा, कितने वर्षों से हाँ बाबा सूक्ष्म वतन में बैठकर हमारा इंतजार कर रहा है, बाहे पसार के खड़ा है, बच्चे आओ संपन्न बन जाओ, अभी सब तैयार है, देखो प्रकृति भी तैयार है, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी तैयार है, सब हमारा इंतजार कर रहे, प्रकृति भी, बाबा तो कर ही रहा है वतन में इंतजार, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी हमारा इंतजार कर रही है, और प्रकृति भी कर रही है। इसलिए अब बाबा कहते बच्चे समय ज्यादा नहीं है, ये खाली हम सुनते आए, पर अब प्रैक्टिकल चारों तरफ के वातावरण को देखते हुए हम ये सोचे कि ये बाबा के महावाक्य इस अंतिम समय के लिए है, और इसी समय अब मुझे परिवर्तन होना है, मुझे अपने आप को बदलना है, यही स्लोगन बाबा ने दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए बदलना है तो मुझे बदलना है, स्थिति बनानी है तो मुझे अपनी बनानी है, इतना अपने ऊपर अटेंशन रखकर हम बाबा को भी याद करते रहे, बाबा की मुरली सुनते रहे, और अपना पुरुषार्थ करते रहे।
ओम।
Thank you.